दानियल की पुस्तक संख्या 124। दानियल 1140 का अनावरण, ऐतिहासिक समानताओं और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी परख विवेचना।
हम पद 40 पर विचार करते हुए दानियल अध्याय 11 की संरचना प्रस्तुत करने के लिए समय ले रहे हैं। भविष्यवाणी की दृष्टि से पद 40 दानियल अध्याय 8 के पद 14 का समानांतर है, इस अर्थ में कि 1798 में मसीह ने यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में जो प्रकाश मुहर खोलकर प्रकट किया वह दानियल अध्याय 8 पद 14 पर आधारित था, और उसी प्रकार 1979 में उन्होंने जो प्रकाश खोला वो पद 40 पर आधारित था, जैसा कि हमने संकेत किया था। लेकिन वास्तव में पिछले लेख में उसे संबोधित नहीं किया था। अंतिम वर्षा की पंक्ति पर पंक्ति पद्धति का प्रयोग करते समय 40वां पद दो पृथक रेखाएं प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसमें प्रथम स्वर्गदूत और तृतीय स्वर्गदूत दोनों के आंदोलन के लिए अंत का समय निहित है।
जब हम 1798 में आयत से 40 के अंत के समय और 1989 में उसी के अंत के समय को एक साथ रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि दानियल अध्याय 8 आयत 14 दानियल अध्याय 11 आयत 40 के साथ मेल खाती है, क्योंकि दोनों ही प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के तीन स्वर्गदूतों के भविष्यवाणी के इतिहास में मुहर खोले जाने पर प्रकट होने वाले ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे इस तथ्य से भी जुड़ी हैं कि आयत 14 मसीह के मंदिर में अचानक प्रकट होने के मारे दर्शन की है, और आयत 40 भविष्यवाणी के 2520 वर्षों के इतिहास के छाजोन दर्शन की है। एक समय का बिंदु है, दूसरी समय की अवधि। एक मंदिर की पुनर्स्थापना और शुद्धिकरण का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा मंदिर के विनाश और रौंदे जाने का। एक 2300 वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा 2520 वर्षों का। एक का प्रतीक उलाई नदी है, दूसरे का हिद्देकेल नदी। एक मानवता का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा दैवत्व का। सही ढंग से समझने पर 14वें पद के साथ संबंध में 40वां पद आश्चर्यजनक रूप से गहन है। 1718 दैवत्व के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है और 1909 मानवता के विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है।
हमने पिछले लेख में ये पहचाना कि उत्तर के राजा द्वारा तीन बाधाओं पर विजय का वर्णन क्रमिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, परंतु चित्रित घटनाओं का वास्तविक अनुप्रयोग सावधानी से करना आवश्यक है, क्योंकि पद 42 से चालाश 44 सहित वस्तुतः पद 41 के साथ मेल खाते हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाला रविवार का कानून है। वही त्रिपक्षीय संघ संपन्न होता है और वहीं पूर्व और उत्तर से आने वाला जोरदार पुरकार का संदेश प्रारंभ होता है।
दानियल के ज्ञाप ने 18वें अध्याय में वर्षों से एडवेंटिस्ट अध्येताओं ने ये पहचाना है कि दानियल रोम के चित्रण में एक विशिष्ट पद्धति का प्रयोग करता है। यूराया स्मिथ ने पुस्तक दानियल एंड रेवलेशन में इसका उल्लेख किया है। दानियल पहले ये बताता है कि रोम संसार पर कैसे नियंत्रण स्थापित करता है, और फिर अगले पदों में वो इतिहास की शुरुआत पर लौटकर राजनीतिक विजयों की पहचान करता है, तथा उसी इतिहास के दौरान रोम परमेश्वर के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है ये बताता है। फिर अंततः वो दर्शाता है कि रोम का अंत कैसे होता है। दानियल द्वारा प्रयुक्त सिद्धांत को दोहराना और विस्तार करना कहा जाता है।
ये तीन चरणीय विधि पद 40 से 45 में पहचानी जाती है। पद 40 से 43 आधुनिक रोम द्वारा पृथ्वी ग्रह पर कब्जा करने की तीन चरणीय प्रक्रिया की पहचान करते हैं। फिर पद 44 में दानियल पद 41 पर लौट आता है, जब समाचार 144,000 के ध्वज द्वारा घोषित किए जाते हैं, और तब पापसी बहुत क्रोध के साथ बहुतों को नष्ट करने और पूरी तरह मिटा देने के लिए निकल पड़ती है। फिर पद 45 और अध्याय 12 पद 1 में समुद्रों और महिमामय पवित्र पर्वत के बीच जब मानव का परीक्षा काल समाप्त होता है, पापसी का अंत हो जाता है और उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता।
दानियल अध्याय 11 के 30वें पद में हमें उस इतिहास की शुरुआत मिलती है जिसे सिस्टर व्हाइट पद 36 तक शब्दशः उद्धृत करती है, और फिर लिखती है, इन पदों में वर्णित दृश्यों के समान दृश्य घटित होंगे।
पद 30 और 31 क्रमशः बाइबल की भविष्यवाणी के चौथे और पांचवें राज्य के रूप में मूर्ति पूजक रोम से पोपतंत्रीय रोम में हुए ऐतिहासिक संक्रमण की पहचान कराते हैं। पद 31 उस इतिहास का वर्णन करता है जो दर्शाता है कि वर्ष 568 में पोपतंत्रीय रोम को पृथ्वी के सिंहासन पर कैसे स्थापित किया गया।
पद 31 में सबसे पहले जिसकी पहचान की गई है वो समय है जब फ्रैंक्स आधुनिक फ्रांस के राजा क्लोविस सन 480 में पापाई सत्ता के लिए खड़ा हुआ। फिर क्लोविस खुलेआम पैगनवाद से अपनी पत्नी क्लोटिल्डा के धर्म कैथोलिक धर्म के छिपे पैगनवाद में परिवर्तित हो गया। उसने फिर अपने सिंहासन को पापाई सत्ता को पृथ्वी के सिंहासन तक ऊपर उठाने के लिए समर्पित कर दिया। उस पद में भुजाओं द्वारा क्लोविस का प्रतिनिधित्व किया गया था क्योंकि उसने जो कार्य तब हाथ में लिया उसके लिए अपनी सैन्य शक्ति की भुजा और अपनी धन शक्ति की भुजा दोनों समर्पित कर दी। क्लोविस का प्रारंभिक कार्य उन सभी राजाओं के कार्य का प्रतिनिधित्व करता था जो पूर्व में मूर्ति पूजक रहे यूरोपीय थे और जिनकी थियति यह थी कि जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़े वे रोम की वेश्या को विभिन्न प्रकार का समर्थन दें। क्लोविस और उसके बाद फ्रांस को कैथोलिक चर्च द्वारा कैथोलिक चर्च का पहलौठा तथा कैथोलिक चर्च की ज्येष्ठ पुत्री की उपाधि देकर अभिषिक्त किया गया। वह उन अनेक राजाओं में से प्रथम का प्रतीक था जो टायर की वेश्या के साथ व्यभिचार करने वाले थे।
इस भविष्यवाणी अर्थ में क्लोविस का प्रतिनिधित्व आहाब द्वारा किया गया था जिसने इजेबेल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कैथोलिक कलीसिया का प्रतीक के साथ भी व्यभिचार किया था और जो 10 गोत्रों का प्रमुख राजा भी था। जैसे क्लोविस मूर्ति पूजक रोम के 10 सींगों देखिए दानियल अध्याय 7 का प्रमुख प्रतीक बन गया। यूरोप के वे राजा अंततः पृथ्वी के सिंहासन पर बाबुल की वेश्या को स्थापित करेंगे। इस अर्थ में आहाब और क्लोविस दोनों संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंतिम दिनों में पोप सत्ता के साथ व्यभिचार करता है।
रोनाल्ड रीगन ने व्यभिचार की शुरुआत की और वही वो अंतिम राष्ट्रपति होगा जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य 9 राजाओं को भी उसी कृत्य को करने के लिए मजबूर करेगा। रीगन 1989 में अंत के समय राष्ट्रपति थे और इसलिए भविष्य सूचक रूप से उन्हें इतिहास के उस अंतिम राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होना चाहिए जिसके समय में अन्य 9 राजा वही कृत्य पूरा करते हैं, क्योंकि यीशु हमेशा किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत से दर्शाते हैं। रीगन एक धनी प्रसिद्ध मीडिया व्यक्तित्व थे, अपनी विशिष्ट बोलने की शैली के लिए अत्यधिक पहचाने जाते थे, जो प्रारंभ में डेमोक्रेटिक पार्टी में थे और अंततः रिपब्लिकन पार्टी में चले गए।
पद 33 में पोपतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सेनाएं शक्ति के पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगी। भविष्यवाणी के अनुसार मूर्ति पूजक रोम और पोपतंत्रीय रोम दोनों के लिए शक्ति का पवित्र स्थान रोम का नगर ही था। ये इस तथ्य पर आधारित है कि रोम के इन दोनों रूपों ने एक निश्चित अवधि तक रोम नगर से शासन किया और जब वे रोम नगर से शासन कर रहे थे तब वे वस्तुतः अजेय थे।
मूर्ति पूजक रोम ने 31 ईसा पूर्व एक्टियम के युद्ध में अपने 360 वर्ष के शासन की शुरुआत की। दानियल अध्याय 11 पद 24 ये बताता है कि वे अपने गढ़ अर्थात रोम नगर से एक समय तक अपनी युक्तियां रचेंगे। भविष्यवाणी की भाषा में एक समय 360 वर्ष होता है और एक्टियम के युद्ध के 360 वर्ष बाद जहां एंटनी और क्लियोपेट्रा पराजित हुए थे कॉन्स्टेंटाइन रोम नगर से निकलकर कॉन्स्टेंटिनोपल नगर में चला गया और मूर्ति पूजक रोम की अजेयता का काल समाप्त हो गया। जब पोपवादी रोकाम के लिए तीसरी भौगोलिक बाधा यानी गोथ वर्ष 528 में रोम नगर से खदेड़ दिए गए तो पोपवादी रोम की 1260 वर्ष की सर्वोच्चता का शासनकाल शुरू हुआ और 1798 तक चलता रहा जब पोप को रोम नगर से हटा दिया गया और इस प्रकार पोपवादी पशु को भविष्योक्त घातक घाव पहुंचा और अगले वर्ष 1793 में वही पोप वह स्त्री जिसने उस पशु की सवारी की थी कैद में मर गया। पपाई सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली सैन्य शक्ति क्लोविस शक्ति के पवित्र स्थान को अपवित्र करने वाली थी और कॉन्स्टेंटाइन ने उस कार्य की शुरुआत इस प्रकार की कि दार्शनिक रूप से उस नगर को कॉन्स्टेंटिनोपल से कमतर नगर ठहराया और उस बिंदु से आगे रोम के शत्रुओं द्वारा संचालित उस इतिहास के युद्ध सदैव रोम नगर पर आक्रमण करने पर केंद्रित रहे और 176-16 ईस्वी तक आते आते नगर पर किसी वास्तविक रोमी वंशज ने फिर कभी शासन नहीं किया, जब तक कि 575 ईस्वी में नगर पपाई रोम के लिए शक्ति का पवित्र स्थान बन गया।
अहाब, क्लोविस और फ्रांस संयुक्त राज्य का प्रतिरूप है और संयुक्त राज्य की शक्ति का अभयारण्य उसका संविधान है। वो दस्तावेज दिव्य है और वो भविष्य सूचक इतिहास का एक मील का पत्थर है। 1979 तक की घटनाओं में जब रोनाल्ड रीगन पापसी के समर्थन में खड़े हुए, तब से संविधान पर लगातार बढ़ते हमले हो रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मूर्ति पूजक रोम के पतन और विनाश के समय उसकी शक्ति का अभयारण्य हमलों के अधीन था। जब संयुक्त राज्य में शीघ्र आने वाला रविवार का कानून लागू किया जाएगा तो संविधान पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा। रीगन के समय से लेकर उस रविवार के कानून तक सन 330 से 538 तक का इतिहास दोहराया जा रहा है। सन 530 में पापसी को सिंहासन पर बैठाया गया और इस प्रकार वो उस रविवार के कानून पर उसके घातक घाव के भरने का प्रतिरूप था।
रोनाल्ड रीगन से लेकर रविवार के कानून तक का काल एक भविष्यवाणी निर्दिष्ट काल है, जिसे परमेश्वर के भविष्यवाणी वचन द्वारा विशेष रूप से पहचाना गया है। क्लोविस द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सैन्य शक्ति को रोमन साम्राज्य के उस राज्य से जो पहले मूर्ति पूजक था दैनिक को भी हटा देना था। साम्राज्य का धर्म शुरुआत से ही मूर्ति पूजक रहा था और क्लोविस ने खुली मूर्ति पूजा के धर्म को कैथोलिक धर्म से प्रतिस्थापित करने का काम शुरू किया, जो वास्तव में केवल आवरण ओढ़ी हुई मूर्ति पूजा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका जब वो जल्द आने वाले रविवार के कानून के तहत पापाई अधिकार के चिन्ह को लागू करता है, तब प्रोटेस्टेंट धर्म को पूरी तरह हटा देता है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट शब्द की एकमात्र परिभाषा रोम का विरोध करना है। यदि आप रोम के अधिकार के चिन्ह को स्वीकार करते हैं तो आप रोम का विरोध नहीं कर रहे हैं। आमोस अध्याय 3:3 में आमोस एक अलंकारिक प्रश्न पूछता है, क्या दो व्यक्ति सहमति के बिना साथ साथ चल सकते हैं?
संयुक्त राज्य अमेरिका में अब जो आंदोलन चल रहे हैं, जो कलीसिया की संस्थाओं और प्रथाओं के लिए राज्य का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए हैं, उनमें प्रोटेस्टेंट लोग पोपवादियों के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर वे पापसी के लिए दरवाजे खोल रहे हैं कि वे प्रोटेस्टेंट अमेरिका में वो प्रभुत्व फिर से प्राप्त कर ले जो उसने पुराने विश्व में खो दिया है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 537।
सन 508 में जब मूर्ति पूजा के धर्म को राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में हटा दिया गया, तो ये इस बात का प्रतीक था कि दूसरा थिसलुनीकियों अध्याय 2 में पौलुस द्वारा उल्लेखित रोग संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय पाप के मनुष्य के प्रकट होने से पहले ही हटा दी गई थी। खुले तौर पर मूर्ति पूजक धर्म का वश में किया जाना, जो कैथोलिक धर्म की छिपी मूर्ति पूजा की ओर संक्रमण था, तुरंत नहीं हुआ। इतिहास में ये फिट्ज़शावन ने ईस्वी में क्लोविस के कैथोलिक धर्म में धर्मांतरण से शुरू माना जाता है और 508 ईस्वी तक पूरी तरह संपन्न हो गया। इस प्रकार 1997 में आरंभ होने वाले रेगन युग से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक संयुक्त राज्य अमेरिका में सच्चा प्रोटेस्टेंटवाद पूरी तरह अंकुश में रखा जाएगा। उस समय संविधान, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शक्ति का पवित्र स्थान है, उलट दिया जाएगा और पद 31 की भुजाओं का चौथा कार्य पूरा होगा, क्योंकि तब वे भुजाएं पापसी को पृथ्वी के सिंहासन पर स्थापित कर देंगी, जैसा कि वर्ष 533 में था। सन 538 में जब पापाई सत्ता ने सेहेंट से हासन संभाला, तो डैनियल की पुस्तक का वर्णन इस बात से कि पापाई सत्ता ने दुनिया पर कैसे कब्जा किया बदलकर उस बात पर केंद्रित हो जाता है कि उस इतिहास में पापाई सत्ता ने परमेश्वर के लोगों को कैसे सताया। डैनियल के अध्याय 10 के पद 14 में गैब्रियल ने डैनियल को बताया था कि वो जो दर्शन दिखाने वाला था, उसका उद्देश्य ये प्रदर्शित करना था कि आखिरी दिनों में परमेश्वर के लोगों पर क्या बीतेगा।
अब मैं तुझे ये समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरी प्रजा पर क्या बीतेगा, क्योंकि ये दर्शन अभी भी बहुत दिनों के लिए है। दानियेल 10:14
पद 32 से लेकर पद 36 तक वे पद हैं जिनके बारे में सिस्टर व्हाइट सीधे कहती हैं कि वे फिर से दोहराए जाएंगे, और वे पद पापसी के 1260 वर्ष के शासन के दौरान हुए उत्पीड़न का वर्णन करते हैं, जब उसे वर्ष 593 में सिंहासन पर बैठाया गया, तब से लेकर 1798 में उसे उसका घातक घाव मिलने तक।
और जो लोग वाचा के विरुद्ध दुष्टता करेंगे वो उन्हें खुशामद से भ्रष्ट करेगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वे दृढ़ रहेंगे और पराक्रम करेंगे, और लोगों में से जो समझ रखते हैं वे बहुतों को शिक्षा देंगे, तो भी वे तलवार, ज्वाला, बंधुआई और लूट के द्वारा बहुत दिनों तक गिरते रहेंगे, और जब वे गिरेंगे तब उन्हें थोड़ी सहायता मिलेगी, परंतु बहुत से लोग खुशामद करके उनसे मिल जाएंगे, और समझ रखने वालों में से कुछ इसलिए गिराए जाएंगे कि उनकी परीक्षा हो और वे शुद्ध और उजले किए जाएं जब तक कि अंत का समय आ न जाए, क्योंकि ये अभी भी ठहराए हुए समय के लिए है, और राजा अपनी इच्छा के अनुसार करेगा, वो अपने आप को ऊंचा उठाएगा और अपने को हर एक देवता से बड़ा ठहराएगा और देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध अद्भुत बातें बोलेगा, और वो तब तक सफल रहेगा जब तक रोष की बात पूरी न हो जाए, क्योंकि जो ठहराया गया है वही किया जाएगा। दानियेल 11:33
ये पद अंधकार युग के उत्पीड़न का वर्णन करते हैं, और फिर 36वां पद ये बताता है कि पापाई सत्ता 1799 में इज़राइल के उत्तरी राज्य के विरुद्ध परमेश्वर का प्रथम प्रकोप पूरा होने तक फलती फूलती रहेगी। दानियेल ने पहले दिखाया कि पापाई सत्ता को पृथ्वी के सिंहासन पर कैसे स्थापित किया गया, फिर ये कि पापाई सत्ता ने परमेश्वर की प्रजा के साथ कैसे व्यवहार किया, और अंत में पापाई सत्ता का अंतिम पतन। दानियेल 11 के पद 40 से 43 बताते हैं कि पापाई सत्ता संसार पर कैसे नियंत्रण कर लेती है, फिर पद 44 बताता है कि वो परमेश्वर की अंतिम दिनों की प्रजा को कैसे सताती है, और फिर पद 43 बताता है कि वो बिना किसी सहायक के अपनी अंतिम परिणति तक कैसे पहुंचती है।
हिब्रू शब्द सत्य का निर्माण अद्भुत भाषाविद ने हिब्रू वर्णमाला के प्रथम 13वें और अंतिम अक्षरों को एक साथ लाकर किया। 13 विद्रोह का प्रतीक है और प्रथम अंतिम का प्रतिनिधित्व करता है।
छंद 31 बाइबल की भविष्यवाणी के चौथे राज्य के रूप में मूर्ति पूजक रोम के अंत का वर्णन करता है, और छंद 36 बाइबल की भविष्यवाणी के पांचवें राज्य के रूप में पोप शासित रोम के अंत को चिन्हित करता है। रोम के पतन के प्रथम वर्णन और अंतिम वर्णन के बीच एक विद्रोह है। उसका प्रतिनिधित्व आरंभ और अंत के बीच के इतिहास में पोप सत्ता द्वारा परमेश्वर के लोगों के लाखों की हत्या से होता है। इन छंदों का अनुप्रयोग सत्य का छाप लिए हुए है।
40 से 45 तक के पद, जिनका चित्रण 30 से 36 तक के पदों द्वारा किया गया है, पोपित तंत्र के पतन से आरंभ होते हैं और पोप तंत्र के पतन पर ही समाप्त होते हैं। 1798 से प्रारंभ होकर अनुग्रह काल के समापन तक की इतिहास रेखा के मध्य में आधुनिक रोम का विद्रोह है, जो एक बार फिर परमेश्वर के लोगों की हत्या करता है। इन पदों के अनुप्रयोगों पर भी सत्य की छाप है, और वे आपस में मेल खाते हैं ताकि दो गवाह प्रदान करें जो सत्य की स्थापना करें, और दोनों रेखाएं रोम का वर्णन करती हैं जो वो प्रतीक है जो दर्शन को स्थापित करेगा।
और उन समयों में बहुत से लोग दक्षिण के राजा के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और तेरे लोगों में से लुटेरे दर्शन को स्थिर करने के लिए अपने आप को ऊंचा उठाएंगे, परंतु वे गिर पड़ेंगे। दानियेल 11:13
ग्यारहवें अध्याय में दानियेल जिस भविष्य सूचक परिहटना का उपयोग करते हैं उसका उपयोग केवल पद 30 से 36 और फिर 40 से 45 में ही नहीं हुआ है। पद 14 से 19 बताते हैं कि मूर्ति पूजक रोम ने संसार पर कैसे अधिकार किया, फिर पद 20 से 24 बताते हैं कि मूर्ति पूजक रोम ने परमेश्वर की प्रजा के साथ कैसे व्यवहार किया, और पद 24 से 30 तक मूर्ति पूजक रोम के पतन का वर्णन किया गया है।
14वां पद मूर्ति पूजक रोम की शुरुआत है और 30वां पद मूर्ति पूजक रोम का अंत लही है। बीच में प्रस्तुत इतिहास में मूर्ति पूजक रोम को मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाला पहचाना गया है। अतः मध्य का विद्रोह इन पदों को सत्य के रूप में चिन्हित करता है। अल्फा और ओमेगा ने दानियल की पुस्तक के 11वें अध्याय में आरंभ से अंत तक अपने हस्ताक्षर लगाए। 40वां पद उस इतिहास को समेटे हुए है जो रोनाल्ड रीगन के दौर में शुरू होता है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और पाप के मनुष्य के बीच हुए गठबंधन की पहचान करता है। ये एक विशिष्ट कालखंड को चिन्हित करता है जो इस पर समाप्त होता है कि पोप की सत्ता को पृथ्वी के सिंहासन पर स्थापित किया जाता है, जैसा कि सन 538 में था। ये संयोग नहीं है कि फ्रैंक्स, जो आज का फ्रांस है, कि राजा क्लोविस संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतीक है। क्लोविस रीगन का प्रतिरूप था। रीगन प्रोटेस्टेंटवाद के प्रतीक थे, जैसे क्लोविस पैगनवाद के प्रतीक थे। वो युद्ध जिसमें फ्रैंकों के राजा क्लोविस ने कैथोलिक धर्म अपनाया, टोलबियक का युद्ध था, जिसे ज़ियुल्फिक का युद्ध या कोलोन का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध वर्ष 99 में हुआ। उस समय क्लोविस मूर्ति पूजक था, लेकिन युद्ध के दौरान जब ऐसा लगा कि उसकी सेना हार के खतरे में है, तो उसने अपनी कैथोलिक पत्नी के ईसाई ईश्वर से सहायता की प्रार्थना की और ये मन्नत मानी कि यदि वो विजयी हुआ तो वो ईसाई धर्म अपना लेगा। क्लोविस ने युद्ध जीत लिया और परिणाम स्वरूप उसने और उसके फ्रैंकों के योद्धाओं के एक बड़े हिस्से ने कैथोलिक धर्म अपना लिया, जिससे फ्रैंकों के ईसाईकरण में ये एक महत्वपूर्ण घटना बनी।
रोनाल्ड रीगन, स्वयं को प्रोटेस्टेंट बताने वाले, ने बताया कि रोम के पोप के साथ गोपनीयता तक बंधन करने की उनकी प्रेरणा ये थी कि उन्हें विश्वास था कि सोवियत संघ बाइबल की भविष्यवाणी वाला ख्रीष्ट विरोधी है। पूर्व सोवियत संघ के विरुद्ध रीगन की लड़ाई में ख्रीष्ट विरोधी कौन है, इस बारे में अपनी ही भ्रम को पहचाने बिना वे ख्रीष्ट विरोधी के साथ ही जा मिले।
जो लोग शब्द की समझ में भ्रमित हो जाते हैं, जो मसीह विरोधी का अर्थ समझ नहीं पाते, वे निश्चित रूप से स्वयं को मसीह विरोधी के पक्ष में खड़ा कर देंगे। क्रेस कलेक्शन 105।
संयुक्त राज्य अमेरिका एक दोहरा भविष्य सूचक प्रतीक है, जैसा कि पृथ्वी के पशु के दो सींगों द्वारा दर्शाया गया है। फ्रांस भी एक दोहरा भविष्य सूचक प्रतीक है, जिसका प्रतिनिधित्व प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में सदोम और मिस्र द्वारा किया गया है। फ्रांस पापाई सत्ता की पहलौठी संतान है और रीगन, जो संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, अंतिम दिनों में प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 के 10 राजाओं में से वह पहला था जिसने टायर नगर की वेश्या के साथ व्यभिचार किया, जिसे 1798 से भुला दिया गया था। 1798 में अंत के समय उसे भुला दिया गया था, पर 1989 में अंत के समय उसे फिर से याद किया जाने लगता है। फ्रांस के नेता क्लोविस ने ऐसी समयावधि की शुरुआत की जिसने फिरीत सित्र में पोपाई सत्ता को सिंहासन पर बैठाए जाने तक मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद ऑर्लेआ की परिषद में पोपाई सत्ता ने रविवार का कानून पारित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता रीगन ने ऐसी समयावधि की शुरुआत की जो शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के साथ पृथ्वी के राज सिंहासन पर एक बार फिर पोपाई सत्ता को बैठाए जाने की ओर ले जा रही है। फ्रांस वह दोहरी शक्ति है जिसने सन 533 में पापाई सत्ता को सिंहासन पर बैठाया और फ्रांस ने नेपोलियन के जनरल बर्थिये के माध्यम से सन 17 लोम्बिट को सिंहासन से उतार दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतिम दिनों में पापाई सत्ता को सिंहासन पर बैठाता है और 10 राजाओं में प्रधान राजा के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका अंततः उसे उजाड़ और नग्न कर देगा, उसका मांस खाएगा और उसे आग से जला देगा। पद 40 में पद 31 का इतिहास निहित और ये बताता है कि पृथ्वी के सिंहासन पर पापसी को फिर से बैठाने का कार्य उस समय अवधि द्वारा निरूपित है जो रोनाल्ड रीगन से शुरू होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतिम राष्ट्रपति पर समाप्त होती है। वो अंतिम राष्ट्रपति रीगन द्वारा पूर्व चित्रित होगा, क्योंकि यीशु सदैव आरंभ के द्वारा अंत को प्रदर्शित करते हैं।
दानियल अध्याय 11 के प्रारंभिक पदों में, जहां पद 2 वो भविष्य सूचक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, हम यूनान के राज्य के इतिहास से पूर्व का इतिहास पाते हैं। यूनान संयुक्त राष्ट्र और प्रकाशित वाक्य 17 के 10 राजाओं की एक विश्व सरकार का प्रतीक है। दानियल 11 का पद 3 सिकंदर महान का परिचय कराता है और पद 2 उस इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है जो अंतिम दिनों में आने वाली एक विश्व सरकार से पहले है। पहले पद में गब्रिएल बस ये बताता है कि मादी और फारसी के राज्य की शुरुआत में उसने दारेवेश को सामर्थ्य दी थी, परंतु 10वें अध्याय में गब्रिएल दानियल के पास तब आया जब उस समय शासन मादी दारेवेश का नहीं बल्कि फारसी कुरूश का था। राज्य को स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी के अनुसार मादी और फारसी के दोहरे राज्य के रूप में जोड़ने के बाद, जैसे फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, तब गब्रिएल उस इतिहास का परिचय देता है जो सिकंदर महान के विश्वव्यापी साम्राज्य से पहले आता है।
और अब मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। देखो, फारस में और 3 राजा उठ खड़े होंगे और चौथा उन सब से बहुत अधिक धनी होगा, और अपनी धन संपत्ति के बल से वो सबको यूनान के राज्य के विरुद्ध उकसाएगा। दानियल 11:2।
अल्फा और ओमेगा हमेशा किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत के साथ रखकर दर्शाता है, और दूसरा पद उस इतिहास की ओर संकेत करता है जो एक विश्व सरकार के लागू होने से पहले का है, जैसा कि सिकंदर महान के यूनानी राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। दूसरा पद संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में भविष्यवाणी की एक पंक्ति है जो अंतिम दिनों की दो सींगों वाली शक्ति है, जिसका प्रतिरूप मादियों और फारसियों की द्विविध शक्ति तथा फ्रांस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये पद उन राजाओं को चिन्हित करता है जो अंतिम दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों का प्रतिरूप होंगे, जो अजगर, पशु और झूठे नबी की 3 भागों वाली एक विश्व सरकार के आगमन से पहले उठ खड़े होंगे। क्लोविस का समानांतर रीगन से है, जो उस इतिहास की शुरुआत में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है, जो अंततः विरोधी मसीह को पुनः सिंहासन पर बैठाने की ओर ले जाता है। दानियल 11 में कुरूश के समय से 3 शासक होंगे और उनके बाद एक चौथा जो उन सब से कहीं अधिक धनी होगा। दारियस मादी फारसी साम्राज्य का पहला राजा था और कुरूश जो उस समय शासन कर रहा था जब दानियल ने गब्रिएल से ये इतिहास प्राप्त किया, दूसरा राजा था। कुरूही के बाद 4 राजा होंगे, इसलिए बाद के राजाओं में चौथा कुल मिलाकर 6ठा राजा होगा। 6ठा राजा सबसे धनी राजा होगा और धनी राष्ट्रपति राजा यूनान के राज्य के विरुद्ध सबको उकसा देगा। रेगन के बाद से राष्ट्रपति रहे पहले बुश, क्लिंट, दूसरे बुश, ओबामा, इसलिए 6ठा और सबसे धनी राजा ट्रंप होगा। वो राजा राष्ट्रपति यूनान के राज्य वैश्विकतावादी को उकसाएगा। हिब्रू वाक्यांश उकसाना की परिभाषा काफी जानकारीपूर्ण है। उस पद में स्टिरअप के रूप में अनुदित इब्रानी शब्द एक मूल धातु है जिसका अर्थ जगाना या जागना होता है। साइरस के बाद 4थे शासक द्वारा निरूपित इतिहास में अन्य किसी भी राष्ट्रपति से कहीं अधिक धनी एक राष्ट्रपति उत्थापित किया जाएगा और अपनी शक्ति व सामर्थ्य के द्वारा ग्रूस के विरुद्ध एक जागरण उत्पन्न करेगा। वैश्वीकरण, प्रगतिवाद और वोकइज्म के प्रतीक के रूप में ग्रूस को 6ठे सबसे धनी राष्ट्रपति के इतिहास की सुर्खियों में ला दिया जाएगा। वो प्रगतिशील वोकइज्म और वैश्विक वर्चस्व से जुड़े विवाद के प्रति समूची पृथ्वी को जागृत कर देगा। सबसे धनी राष्ट्रपति के कार्यकाल में लाया गया प्रगतिशील वोकिज्म आंदोलन का जागरण रिपब्लिकन खेमे में उसी समय घटित होता है जब प्रोटेस्टेंट खेमे में 10 कुंवारियों का जागरण होता है। हम अगले लेख में दानियल के 11वें अध्याय के 40वें पद का अपना अध्ययन जारी रखेंगे।
विश्वास और धर्म परायणता में व्यापक रास के बावजूद इन कलीसियाओं में मसीह के सच्चे अनुयायी हैं। पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय के अंतिम प्रकटन से पहले प्रभु के लोगों के बीच प्रारंभिक धर्म भक्ति का ऐसा पुनर्जागरण होगा जैसा प्रेरितों के समय से अब तक नहीं देखा गया है। परमेश्वर का आत्मा और उसकी सामर्थ्य उसके बच्चों पर उंडेले जाएंगे। उस समय अनेक जन उन कलीसियाओं से अपने को अलग कर लेंगे जिनमें इस संसार का प्रेम परमेश्वर और उसके वचन के प्रेम का स्थान ले चुका है। बहुत से धर्मोपदेशक भी और सामान्य जन भी उन महान सत्यों को आनंदपूर्वक स्वीकार करेंगे जिन्हें प्रभु के दूसरे आगमन के लिए एक प्रजा को तैयार करने हेतु परमेश्वर ने इस समय प्रचारित कराया है। आत्माओं का शत्रु इस कार्य में बाधा डालना चाहता है और ऐसे आंदोलन का समय आने से पहले ही वो एक नकली प्रतिरूप पेश करके उसे रोकने का प्रयास करेगा। जिन कलीसियाओं को वो अपनी छलपूर्ण शक्ति के अधीन ला सकता है उनमें वो ये दिखाएगा कि परमेश्वर की विशेष आशीष उंडेली जा रही है। वहाँ ऐसा प्रकट होगा जिसे महान धार्मिक उत्साह समझा जाएगा। असंख्य लोग ये कहते हुए उल्लसित होंगे कि परमेश्वर उनके लिए अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है, जबकि वो कार्य किसी अन्य आत्मा का होगा। धार्मिक आड़ में शैतान मसीही संसार पर अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयत्न करेगा। महान विवाद 407 मिशे।